ये प्रवचन है जिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाविद्यालय चंडीगढ़ में 10:38 बुक डिस्ट्रीब्यूशन के पर। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 कैंटो 10 चैप्टर 10 श्लोक 38 दसवें स्कंद का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है हम सब भक्तों के लिए। वाणी विनानु कथाने श्रवणो कथायां अस्तो चा कर्मासु जगत्नामे ऋषि सातम दर्शने स्तु भावा तनूनाम वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां
वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां
अस्तो च कर्मसु मनस्ताव पदयोर्नः स्मृत्यां शिरस्ताव निवस जगत्प्रणामे दृष्टि सतम दर्शने स्तु भवत् तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां हस्तो च कर्मासु मनस्ता पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्ताव निवस जगत्प्रणामे दृष्टि सतम दर्शने स्तु भवत् तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां हस्तो च कर्मासु मनसा पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्ताव निवस जगत्प्रणामे दृष्टि सदम दर्शने स्तु भवत् तनूना देख नहीं सकते उधर से।
वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास प्रणामे वाणी गुणानुकथने श्रवणोकथायां हस्तो च कर्मसु मनसा तव पादयोर्नः
Mata Ji. ठीक दिख रहा नहीं है ना शब्द अर्थ माइक लीजिए
बाणी
शब्द
बोलने की शक्ति
गुण
अनुकथन
सदैव
आपकी लीलाओं के
विषय में
बातें करने में व्यस्त
श्रवण
कान
कथायां
आपकी तथा आपके लीलाओं के
विषय में
बातें करने में
हस्तो
हाथ
पैर
तथा
अन्य इंद्रियां
च
भी
कर्मशु
आपका आदेश
पालन करने में
लगाकर
मन
तब
आपके का
पादयो
चरण कमलों का
नाह
हमारी
स्मृत्यां
ध्यान में लगी
स्मृति में
सिर तब
आपका
निवास जगत प्रणामे
क्योंकि
आप
सर्वव्यापी हैं
और सर्वस्व है
तथा हमारे
सिरों को
नत
होना चाहिए
भोग के लिए नहीं
दृष्टि ही
देखने की शक्ति
सतां
वैष्णवों के
दर्शन करने में
अस्तु
इसी तरह लगे रहें
भवत तनुना
जो आपसे अभिन्न है
अनुवाद
अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें हमारे कान आपका महिमा का श्रवण करें हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें क्योंकि सारी वस्तुएं आपकी ही विवर्त रूप है और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें अब से
हमारे सभी शब्द
आपकी लीलाओं का
वर्णन करें
हमारे कान
आपका महिमा का
श्रवण करें
हमारे हाथ
पांव
तथा
अन्य इंद्रियां
आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे
तथा हमारे मन
सदैव
आपके चरण कमलों का
चिंतन करें
हमारे सिर
इस
संसार की हर वस्तु को
नमस्कार
करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। ये विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सक्षम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश रोचनम भक्ति रुच्यते नारद पश्चात। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन शरीर तथा सारे इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद स्वयं को तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यद मत तत् मत मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्याहं एकया ग्राह्यः, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत 11:14 यह अनुकूल्यं कृष्णानुशीलनम् अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है।
ओम ज्ञातृवृन्दस्य ज्ञानञ्जनाशोकय चक्षुर्मिलितनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं तारतम्येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां सर्वजं सहगना रघुनाथान्वितं तं सदैवं सद्वैतं सर्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंचा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे
जगत बनामे दृष्टि सदम दर्शन से भवत तनूनम। तो भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसका उच्चारण कर रहे हैं कौन? मणिग्रीव और नमक हो गए। यह भागवतम के 10वें अध्याय में प्राप्त होता है। भागवतम के 10वें स्कंद में आप भगवान की दामोदर लीला के विषय में पढ़ते हो। कुछ दिन पहले ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ था और कार्तिक को एक और नाम है उसका दामोदर महीना। और कार्तिक के महीने में कहा जाता है कि थोड़ी भी भक्ति करो उसका 1000 गुना लाभ मिलता है। और कार्तिक के महीने में हमारा भक्तों का प्रयास रहता है कि श्रवण कीर्तन बढ़ाएं और शरणम कीर्तन पढ़ने से आध्यात्मिक जीवन भी आगे बढ़ता है। स्कंद पुराण में कथा पढ़ते हो, एक समय एक चूहा था जो एक मंदिर में जाकर जो घी दिया अर्पण किया जाता था उसके घी को खाता था, चखता था। एक दिन वो चखने गया, जब दिया जल रहा था अक्सर वो जाता था, जब वो बुझ जाता था तो जल रहा था, उसकी रुई फंस गई थी उसके दांतों में और वो प्रयास कर रहा था कि रुई को किसी प्रकार से दांत से निकाले, और निकालने के प्रयास में वो एक रूप से भगवान के सामने नाच रहा था और फिर मर गया। तो भगवान के धाम गया, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने नाच रहा था। तो कहते कि मन में छोटी सी सेवा का भी हजारों में लाभ मिलता है। तो भगवान के दामोदर लीला के दो भाग हैं, एक भाग जो आप दामोदर रस के द्वारा पढ़ते हो, जिसमें आप पढ़ते हो कि किस प्रकार यशोदा माता ने प्रयास किया था भगवान को बांधने के लिए, पुरुष की गोपियाँ बकायदा यशोदा माता को शिकायत करती थी कि आपका बेटा आता है हमारे घर में मक्खन चुराने, और माँ यशोदा माता कहती थी तो मेरा बेटा आपके घर में क्यों है, मेरे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है? यशोदा माता के पास नंदमहाराज के घर में 9 लाख गायें थी, कितनी? 9 लाख, अंदाजा लगा कितना बड़ा गौशाला होगा। मेरे ख्याल से पूरे चंडीगढ़ से भी बड़ा होगा। तो 9 लाख गायें थी जिनमें 100 गायें थी बड़ी प्रसिद्ध, जो कि खास फ्लेवर का घास खाती थी और जो दूध भी निकलता था अलग अलग फ्लेवर का, अलग अलग मिठास के साथ। तो आप पढ़ते हो भागवत में किस किस प्रकार भगवान यशोदा माता मक्खन मथन मथ रही थी और भगवान की बाल लीलाओं का गुणगान कर रही थी, और किस प्रकार भगवान ने मटकी तोड़कर मक्खन जो चुराया था, मक्खन बाहर निकला बांटने लगे सब बंदरों को, और किस प्रकार भगवान उनकी माता ने उनका पीछा किया। ऐसे तो भगवान को पकड़ा आसान है नहीं, बड़ा कठिन है, पर माता ने भगवान के पीछा किया। माता ने सोचा मुझे इसे बांधने दो, हाँ, और वैसे भगवान को पकड़ना बहुत कठिन है, तो माता पकड़ पाई। और जब भगवान को बांधने गई, क्या है श्री राधा माधव की, जब श्री यशोदा माता भगवान को बांधने गई तो उन्होंने क्या अनुभव किया कि रस्सी कितनी उनकी छोटी निकल रही थी, कई रस्सियों को जोड़ा जब भी 2 उंगली छोटी निकल रही थी। हमारे आचार्यों ने समझाया है कि 2 उंगली छोटी निकलने का भाव यह है, 1 उंगली का भाव है कि आप प्रयास करोगे तो ही भगवान को समझ सकोगे। जैसे भौतिक क्षेत्र में भी प्रयास करोगे तो ही अच्छे नंबर आते हैं या सफलता प्राप्त होती है, तो आप प्रयास करोगे भक्ति के मार्ग में तो ही भगवान को प्राप्त कर सकोगे। और भगवान को प्राप्त कर सकोगे कैसे? उनकी कृपा से, ये नहीं कि आपके हुक्म से। और उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है? जब आप उनकी शिक्षा का पालन करो, जब उनकी शिक्षा का पालन करो तो खुद ही खुद उनकी गुरु की परंपरा की कृपा प्राप्त होती है। और जब भगवान ने देखा कि मेरी माता इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए पर सफल नहीं हो रही, और दूसरी गोपियां हैं वो भी इस लीला को देख रही थी और हंस रही थी, सोच रही थी देखो यशोदा माता कितनी निकम्मी है, छोटे बेटे को भी बांध नहीं सकती। और माँ यशोदा माता भी आश्चर्य हो रही थी कितनी रस्सियों को जोड़ा जब भी ये सफलता प्राप्त नहीं हो रही, परंतु फिर भगवान ने उन्हें बांधने दिया और मुखल के साथ बन गई थी। तो आगे जाकर आप दामोदर लीला का दूसरा भाग पढ़ते हो, क्योंकि जिस भगवान ने इन दो वृक्षों का उद्धार किया, मान यमुना अर्जुन पेड़ों का। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ये लीला भी दामोदर लीला है। तो इस लीला में आप क्या पढ़ते हो? पढ़ते हो कि कुबेर के जो दो बेटे थे, भगवान दो अंक के साथ बंधे हुए थे, कुबेर के जो दो बेटे थे जिनका नाम क्या था, और जैसे आप साधारण समाज में देखते हो धनी खानदान के बच्चे बड़ी जल्दी बिगड़ जाते हैं कि नहीं। तो नल कुबेर मणिग्रीव शिव जी के भक्त होने के कारण उन्हें खास सुविधा प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा वो कैलाश पर्वत तक पहुंच सके और मानसिक गंगा में स्त्रियों के साथ खेल रहे थे जैसे हाथी हाथियों के साथ खेलता है और भरूनी शराब के नशे में थे और इतने गहरे नशे में थे कि जब ये महान संत नारद देवर्षि नारद जी वहाँ पहुँचे वो अपने नंगे शरीर को ढक भी नहीं पाए, इतने नशे में थे। जो औरतें थी उन्होंने अपने आप को ढक लिया था, पर ये नल कुबेर मणिग्रीव इतने गहरे नशे में थे कि वो नहीं ढक पाए। तो जो संत है वो अगर डांटता भी है तो हमारे सुधार के लिए। संतों के मन में एक ही भाव रहता है कि पूरे समाज का उद्धार हो, पूरे समाज का सुधार हो और हमें श्रद्धा से इसे स्वीकार करना चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा कि जो दो बेटे हैं कुबेर के, नंद कुबेर मणिग्रीव, ये ऊंचे समाज में जन्म लिया है पिता के कारण, ऊंचे समाज में हैं पर अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहे हैं। और फिर नारद मुनि ने क्या सोचा, मुझे इन्हें क्या करने दो, श्राप करने दो। श्राप दिया कि आप दो वृक्ष बन जाओगे, पर कहाँ पेड़ बनोगे, कहाँ धनराज के आंगन में। ये नहीं कि आप पेड़ बनोगे लंदन या न्यूयॉर्क में, पेड़ बनोगे धनराज के आंगन में। पर इस श्राप के साथ एक वर भी दिया, और वर क्या था कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें स्वयं परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान जब भगवान के जो भक्त हैं जब कोई वचन देते हैं तो भगवान अवश्य ही उसका पालन करते हैं। जैसे आप 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु की कथा पढ़ते हो, हिरण्यकशिपु ऐसे तो थे भगवान के उत्तम कोटि के भक्त जाय बजाय ओम के भाई, पर प्रकट हुए थे सूर के रूप में भगवान की लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए। और जब भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं पृथ्वी पर तो उनके ही सनातन साथी अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। और ठाकुर भक्तिनाथ जी कहते हैं कि जब हम इन लीलाओं के विषय में पढ़ते हैं किस प्रकार भगवान ने अनेक असुरों का वध किया, तो इन लीलाओं को पढ़कर हमारे जो भौतिक आकर्षण है वो भी नष्ट होता है। तो हिरण्यकश्यप की इच्छा थी कि किसी प्रकार से उसे मृतक के सामने नहीं छूटना पड़े। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं वर तुम्हें कैसे दूं जबकि मुझे भी मृत्यु के सामने झुकना पड़ेगा। ब्रह्मा जी की अभी की भी आयु लंबी है पर अंत में उनको भी शरीर त्यागना पड़ता है। उनकी आयु है 311 trillion 40 billion साल, 311 trillion 40 billion। तो ब्रह्मा हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए थे ब्रह्मा जी से, और उनके मन में भाव था अब मुझे ये वर प्राप्त हो गया है कि ना मेरी मृत्यु होगी किसी हथियार पशु मनुष्य के द्वारा, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना सागर में। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के सब वरों का पालन करते हुए भगवान प्रकट हुए किस रूप में, नरसिंहदेव के रूप में। तो भगवान अपने भक्तों का जो भक्तों भगवान के भक्त जो वचन देते हैं तो भगवान उसका पालन करते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए थे नरसिंहदेव के रूप में तो हिरण्यकश्यपु का वध होने के बाद उन्होंने हिरण्यकश्यपु से कहा भविष्य में ऐसा वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था। अपने ऐसा था। तो भगवान को पता था क्योंकि प्रिय भक्त नारद ने ये वचन दिया है नल कुबेर मणिग्रीव को कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। हमारे पृथ्वी के 6 महीने भगवान देवताओं के लोगों के 12 घंटे के बराबर है। तो अंदाजा लगाओ देवताओं के 100 वर्षों के लिए उन्हें वृक्ष के रूप में उपस्थित हैं। तो भगवान ने अपने उखल उखल से बंधे हुए थे, भगवान ने खींचा उखल को क्योंकि 2 पेड़ों के बीच में अटक गया। जब जोर से खींचा तो क्या, 2 पेड़ गिरे। जब ये 2 पेड़ गिरे तो इतनी भारी आवाज हुई कि नंदमराज यशोदा माता सब भागे भागे आए देखने के लिए क्या बीत गया, क्या घटना बीत गया, क्या घटना बीत गया। और जब नंदमराज ने देखा कि 2 पेड़ों के बीच में उनका बेटा है तो कहने लगे देखो भगवान जी क्या कृपा, मेरा बेटा बच गया। अगर ये पेड़ उन पर गिरते तो मर जाते, है ना। तो भगवान जी क्या कृपा है कि ये पेड़ ये बच गए। फिर उन्होंने पड़ोसियों से पूछा, दूसरे ग्वाले जो खेल रहे थे भगवान के मित्र, ये पेड़ कैसे गिरे। और इन ग्वालों ने कहा ये पेड़ आपके बेटे ने गिराए हैं, हमने हमारी आंखों से देखा। नंदमराज कहते थे ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है कि मेरा छोटा बेटा 5 साल छोटा सा इतने बड़े पेड़ को गिरे, 2 पेड़ों को गिराएगा, कभी संभव नहीं। जरूर आंधी आई होगी तेजी के साथ उनके खाने में पेड़ गिर गया। तो भगवान की योगमय शक्ति द्वारा उनके प्रिय साथी भी पहचान नहीं सकते कि उनके असली स्वरूप को। तो मणिग्रीव और नल कुबेर जब निकले पेड़ से तो उन्होंने अनेक स्तुतियों द्वारा परम भगवान का गुणगान किया। आप पढ़ते हो इन स्तुतियों को इस अध्याय के 10वें स्कंद में, बड़े सुंदर स्तुतियों में उन्होंने परम भगवान का गुणगान किया। और ये स्वीकार किया कि उनके गुरु नारद मुनि की कृपा से उन्हें क्या प्राप्त हो रहा है, भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है उनकी कृपा से। और भगवान के अनेक गुणों का वर्णन करने के पश्चात उन्होंने बहुत ही सुंदर स्तुति का उच्चारण किया जो जो आज के प्रवचन का विषय है। तो ये श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं मणिग्रीव और नल कुबेर। ये दोनों इस श्लोक द्वारा हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे काल आपकी महिमा का श्रवण करें। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक में तात्पर्य में कहते हैं, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि का दी गई है। तो हम सब जुड़े हैं इस भक्ति योग की शिक्षा के साथ। और भक्ति योग का अर्थ क्या है? भगवान के साथ सेवा में जुड़ना। और हमारी सेवा आरंभ होती है कैसे? श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में भगवतम के सातवें अध्याय स्कंद पांचवें अध्याय के प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। कौन सा ये प्रसिद्ध श्लोक? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पान आश्रम मंदिर दर्शन सख्यम। ये श्लोक का उच्चारण किया था प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु समझ नहीं पाते थे प्रहलाद को ये दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो रहा। प्रहलाद ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जब अपनी माता के घर में थे नारद मुनि जी के द्वारा। और हिरण्यकशिपु को ये भाव था, उनका ये भाव था कि शायद वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को ये ज्ञान देने के लिए। तो उन्होंने प्रहलाद के जो दो अध्यापक थे संदर और मर का, उन्हें बहुत डांटा। उन्होंने कहा हम इसके कारण नहीं है, हमें खुद ही समझ आता कि कौन है आपके बेटे को ये ज्ञान दे रहा है। और प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने बेटे को गोद में बिठा कर एक दिन पूछा, ये बताओ पाठशाला में क्या सीखे आज? उन्होंने सोचा था कि बेटा कहेगा कि आप हो सबसे सर्वश्रेष्ठ। पर बेटे ने क्या सुनाया? निरंतर भक्ति का ज्ञान दिया। तो ये निरंतर भक्ति का ज्ञान हम भक्तों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ भगवान की समझने की विधि दी जा रही है। तो यहाँ नंद कुबेर मणिग्रीव कह रहे हैं अब से। अब से का अर्थ ये है कि पहले अज्ञानता में हमने अनेक प्रकार के गलत कार्य किए, जैसे कि मानसी गंगा, गंगा में लोग जाते हैं अपने अशुद्ध हृदय शरीर को शुद्ध बनाने के लिए, और ये गए थे गंगा में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और अज्ञानता में थे कई गलत कार्य कर रहे थे। पर अब नारद मुनि की कृपा से उन्हें असली ज्ञान मिला है। भगवतम के इसी अध्याय में एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे अगर आप धूप के सामने खड़े होते हो तो अंधेरापन दूर दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब आप शुद्ध भक्त या साधु की संगत में आते हो तो अज्ञानता भी दूर हो जाती है। इसीलिए चैतन्य चैतन्य में कहा गया है साधु संगत साधु संगत सर्वशास्त्रायाम लावा मात्र साधु संगत सर्वसिद्धि है। कि हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम साधु की संगत में रहें, क्योंकि भक्तों की संगत में रहने से माया का प्रभाव से आप बच सकोगे। जैसे कि चैतन्य चैतन्यमृत में कहा गया है कृष्ण सूर्य सम माया हया निकारा, यहाँ कृष्ण तयनी माया निकारा। जहाँ कृष्णा है वहाँ माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे कि जहाँ रोशनी है अंधेरापन महसूस नहीं होता। तो ये अवश्य हम साधु की संगत में रहें। तो अज्ञानता में थे पहले नंद कुबेर मुनि भी, पर अब नारद मुनि की कृपा से उनकी अज्ञानता दूर हो गई है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय किया है कि अब से हमें वो गलती नहीं करनी जो कि हम पहले करते थे। तो यही भाव होना चाहिए हम सब का। कि हम प्रभुपाद जी भगवान की कृपा से जुड़े हैं भक्तियों की शिक्षा के साथ, तब से हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम पाप के कार्यों से दूर रहें। तो क्या करें, हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें और हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। तो इसे कहा जाता है श्रवणम और कीर्तनम। श्रवण और कीर्तनम हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कार्तिक के महीने भक्तों का प्रयास रहता है श्रवण कीर्तनम बढ़ाने का। मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो 64 माला करते हैं, 32 करते हैं कार्तिक के महीने में। तो शब्दों द्वारा भगवान का गुणगान, कानों द्वारा इस गुणगान को सुनना। यहाँ तो कहा गया भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। तो लीलाओं का अर्थ ये भी है भगवान के नामों का। जैसे आप जानते हो कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार, भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के रूप में। और भगवान अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु जी शिक्षा सका के पहले श्लोक में कह रहे हैं चेत दर्पण मार्जना, भगवान के नामों का के उच्चारण का एक लाभ ये है, अनेक लाभ है पर एक लाभ ये है क्या, चेत दर्पण मार्जना, हृदय की जो महल है जो कि आप मोबाइल फोन बंद करोगे के बगैर के, हृदय की जो महल है जो अब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के रूप में अनुभव करते हैं, ये दूर होगी। आप सबका अपना अभ्यास होगा कि जब आप बड़े ध्यानपूर्वक जाप करते हो सुबह के समय तो सारा दिन भक्ति का उत्साह रहता है कि नहीं, ये बात सच है। जैसे अगर आपको कोई भोजन दे खाने के लिए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आपको पेट भरा हुआ है, आपको पता आपका पेट भर गया। तो ये आप खुद अनुभव कर सकते हो कि जब आप श्रवणम कीर्तनम करते हो चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, जैसे आप जानते हो इस कौन संस्था के केंद्र विश्व के हर कोने में है और हर कोने में बड़े ऊंचे कोटि के वैष्णव उपस्थित हैं जो कि बड़ी जो कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और माध्यम क्या है, श्रवण कीर्तनम के माध्यम से। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, केवल हरि नाम लेकर गए अपने साथ और भगवतम के सेट ले गए थे। और अगर प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन आरंभ किया तो हरि नाम के माध्यम से ही आरंभ किया। न्यूयॉर्क में एक बड़ा प्रसिद्ध पार्क है थॉमकिन स्क्वेयर पार्क, जहाँ की प्रभुपाद पेड़ के नीचे बैठकर एक मृदंगा जो भारत से ले गए थे उसको बजाते हुए कीर्तन करते थे। अगर आप कभी न्यूयॉर्क जाओ तो टॉमकिंस स्क्वेयर पार्क में अभी सरकार ने एक प्लैंक लगा दिया है, दिस इज द ट्री अंडर विच द फाउंडर ऑफ द हरे कृष्ण मूवमेंट स्टार्टेड दिस मूवमेंट। तो प्लैंक लगा हुआ है कि इस पेड़ के नीचे हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य ने आंदोलन आरम्भ किया था। तो श्रवणम और कीर्तनम, कई बार भौतिकवादी कहते हैं कि आप थकते नहीं, आप एक ही नाम का उच्चारण करते हो दिन रात, तो क्या है उत्तर, नहीं, क्योंकि भगवान के नामों में भगवान पूरी शक्ति डाली है। दिन रात भी करोगे थकोगे नहीं। हमारे सामने कई उदाहरण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है हरिदास ठाकुर का, जो कि दिन में कितनी बार, 3 लाख बार जाप करते थे। एक समय चांदकाजी ने सूचना दी थी कि तुम यह हरिनाम बंद करो, क्यों, मुसलमान खानदान में जन्म लिया है, हरि नाम बंद नहीं करोगे तो हमारे धर्म का अपमान हो रहा है। हरिदास ने स्वीकार नहीं किया कि हरि नाम बंद करें, तो हरिदास को 22 बाजारों से घसीट कर ले जा रहे थे और ये कहा जा रहा था हरि नाम बंद करो और हम तुम्हें पीटना बंद कर देंगे। हरिदास हरि नाम करते गए तो भगवान के नामों में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली है। अब रोज सुबह नारद मुनि उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि रोज सुबह आप जागते हो, त्याजी हवा अनुभव करते हो, आपको कभी ऐसे लगता है कि ये बासी हवा? तो उसी प्रकार हरि नाम का दिन रात भी उच्चारण करोगे आप थकोगे नहीं। तो यहाँ कहा जा रहा भगवान की लीलाओं, तो लीलाओं का और नामों का। रूप गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, जिनमें दो ग्रंथों का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने किया है, एक है भक्ति रसामृत सिंधु और दूसरा है श्री उपदेशमृत। दोनों ही ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण हैं, आप सबको पढ़ना चाहिए बड़े ध्यान से। रूप रघुनाथ पदे कई व्यकृति कबे माँ हे रो सी ठाकुर जी कहते हैं कब वो दिन आएगा शुभ दिन जबकि मुझे रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। तो श्री उपदेशमृत ग्रंथ में केवल 11 श्लोक है पर हर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस श्लोक में सातवें श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं भगवान के जो नाम हैं ये चीनी जैसे मीठे हैं, भगवान के लीलाएं हैं चीनी जैसे मीठी हैं, पर क्योंकि हमारी हमारे जीव में अविद्या की एक बीमारी है ये मीठापन महसूस नहीं हो रहा। जैसे कि कई बार आपके जीव में छाले पड़ जाते हैं, तो चाहे आपको कितना भी अच्छा भोजन दिया जाए प्रसाद दिया जाए उसका टेस्ट आता ही नहीं आता। आपको ऊंचा बुखार हो तो कितने भी अच्छी अच्छा प्रसाद दिया जाए उसका टेस्ट नहीं आता। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के नाम तो मीठे हैं, भगवान की लीला भी बहुत मीठी हैं, तो जिसका अर्थ है हमें दिन रात खुशी से भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, जैसे कि आज के श्लोक में कहा जा रहा है। पर हम नहीं कर पाते है कि नहीं, हम 16 माला करते हैं तो सोचते हैं हाँ बहुत बड़ी सेवा कर रही है। जब श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के पहले केंद्र को खोला था न्यूयॉर्क शहर में, तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा था 64 माला दिन में करने। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु कहते थे अगर आप 64 माला नहीं कर सकते तो तुम बड़े पतित हो। तो प्रभा जी ने भक्तों को कहा था चैंट 64 राउंड। तो भक्तों ने प्रयास किया, उस समय केवल अमेरिकन भक्त थे और भक्तों ने प्रयास किया पर कोई भी 64 माला नहीं कर पाया 3-4। तो चार 3-4 दिन बाद सब लौटे प्रभुपाद जी के पास, ये सर कहते हुए ये कहने लगे कि स्वामी, उन दिन में प्रभुपाद को स्वामी जी को प्रभुपाद जी नहीं बुलाते थे, स्वामी बुलाते थे, और कहने लगे स्वामी हम लोगों के लिए हम अमेरिकन के लिए 64 माला करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो 32 माला करो। तो उन्होंने 32 माला भी ट्राई किया कुछ दिनों के लिए, 32 माला भी नहीं कर पाए। तो थोड़े दिन बाद भक्त लौटे और कहने लगे स्वामी 32 राउंड इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। तो प्रभुपाद ने कहा ओके 16 राउंड एंड नो लेस फाइनल। प्रभुपाद ने कहा 16 माला इससे कम नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है आप ज्यादा भी कर सकते हो पर 16 माला कम से कम। तो भगवान के जो नाम है मीठे हैं चीनी जैसे, पर क्योंकि हमारे जीव में अज्ञानता का प्रभाव है काम को लोमो मन से लेकर द्वारा, इसलिए हमें इसका मीठापन महसूस नहीं होता। तो कोई उपाय है या नहीं है? है उपाय? यस नो? यस। रूप गोस्वामी हमें उपाय भी देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम बकायदा नियमित रूप से जाप करोगे तो ये अविद्या की बीमारी क्या होगी, दूर हो जाएगी और तुम्हें फिर से इसका फिर भगवान के नामों का मीठापन महसूस होगा। तो यहाँ हमें एक नलकुबेर मुनि की ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें शब्दों के द्वारा भगवान की लीला भगवान के नामों का वर्णन करना चाहिए और हमें कानों के द्वारा भगवान का गुणगान सुनना चाहिए। और जैसे हम कह रहे थे, आप सबका अनुभव है कि जब आप ध्यान से इस शिक्षा का पालन करते हो तो भक्ति में उत्साह रहता है। कई बार भक्त पूछते हैं क्या कारण है, कभी कभी हम बड़े उत्साहित होते हैं, कभी कभी उत्साह कम हो जाता है। हाँ, कारण एक ही है कि जब आप ध्यान से जाप श्रवणम कीर्तनम करते हो, भक्ति की विधि का पालन करते हो तो उत्साहित रहते हैं, और जब ध्यान से श्रवणम कीर्तनम नहीं करते तो उत्साह कम हो जाता है। तो और भगवान की लीला, भगवान की इतनी लीलाएं हैं, अब भागवतम के 10वें स्कंद को पढ़ो, भगवान की बाल लीला से आराम होता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। और स्मरण जब कर पाओगे, जब आप पढ़ोगे, और पढ़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने बड़े प्रयास से इन ग्रंथों का अनुवाद किया, इन ग्रंथों को प्रकाशित किया। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो भक्त जुड़े इस संसार के साथ वो इन ग्रंथों को पढ़ें भी, पढ़ोगे तो फिर लीलाओं का वर्णन भी कर पाओगे, है कि नहीं? सुनोगे तो लीलाओं का वर्णन भी कर पाओगे। तो इन ग्रंथों को हमें पढ़ना भी चाहिए। पापा जी कहते थे कि जब भगवान देखते हैं कि हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उन्हें समझ सके। तो श्रवणम कीर्तनम ये सबसे महत्वपूर्ण है अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे हमारे हाथ श्रवणम कीर्तनम के ऊपर आप दिन रात चर्चा कर सकते हो, पर आगे भी कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ। हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में ही लगे रहे, तो हम सब का प्रयास रहना चाहिए कि उन कार्यों में जुड़े जिसके द्वारा अब भगवान को क्या कर सको, प्रसन्न कर सको। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा है जिसके विषय में आप पढ़ते हो, जिसे आप पढ़ते हो मद लीला के 22वें अध्याय में। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के शरणागत होने के विषय में सनातन गोस्वामी को कहा कि भक्ति का पहला, भगवान के शरणागत होने के विषय में पहला नियम यह होना चाहिए कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे हरे कृष्णा कैसे हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से, जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसे क्या करो, त्यागो। तो वही भाव इस श्लोक में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ मन ग्रीव नल कबीर कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव और अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में ही लगे रहे। मतलब कि भगवान प्रसन्न कब होते हैं, कब होते हैं, कब होते हैं, जब आप उनकी शिक्षा का पालन करते हो। और दुखी कब होते हैं, जब हम उनकी शिक्षा का विरोध करते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु एक समय हरिदास ठाकुर को मिलने गए थे और चैतन्य महाप्रभु चिंता में थे। क्या थी उनकी चिंता, किस प्रकार पतितों का उद्धार होगा, ये थी उनकी चिंता। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास से कहा, हरिदास इन उदाहरण इन मृतों का उद्धार कैसे होगा, ये था भगवान की चिंता। हजारों साल पूर्व नमश्रानिया में संतों की एक सभा चल रही थी और संतों की क्या चिंता थी, किस प्रकार भविष्य में ये जो संत थे उनके पास खास योग्यता थी जिसके द्वारा वो देख सके कि कलयुग के क्या लक्षण होंगे। तो उन्होंने पूछा, उनकी चर्चा क्या थी, किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा कलयुग में। तो भगवान की यही चिंता रहती है, किस प्रकार भजीव मेरे धाम में लौटेंगे। तो इसलिए ये कहा, जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसे स्वीकार करो और जो कार्य प्रतिकूल है उसे त्यागो। तो हाथ पांव तथा अनेक इंद्रियों का उपयोग करो, किसके लिए, भगवान की सेवा में। और इस विषय में अनेक उदाहरण हैं, खास करके अमरीश महाराज का उदाहरण है जिसमें उन्होंने ये बताया किस प्रकार हाथ पांव इंद्रियों का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में। अमरीश महाराज ने नेत्रों का उपयोग किया किस लिए, भगवान के दिव्य विग्रह दर्शन। और आज इंटरनेट की कृपा से आप इसमें कई मूर्तियों का दर्शन रोज ले सकते हैं ना। आप चंडीगढ़ में बैठे बैठे राधा माधव का तो ले सकते हो, पर कृष्ण बलराम राधा माधव अनेक मूर्तियों का दर्शन भी ले सकते हो। तो हमारा भाव होना चाहिए कि हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां भगवान के सेवा में ही जुड़े रहे। और भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या का एक चर्चा करते हैं और शरीर के विषय में कहते हैं शरीर का उपयोग करो किस लिए, भगवान की सेवा में। और आगे कहते हैं, हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का ही चिंतन करें। तो मन को आप बंधु भी बना सकते हो और क्या,
शत्रु
भी। भगवान भगवद गीता के छठे अध्याय जिसका विषय ध्यान योग, उसमें कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मन को बंधु बना लिया वो व्यक्ति हमेशा संतुष्ट रहेगा, और जिस व्यक्ति ने मन को बंधु नहीं बनाया उसके लिए आध्यात्मिक जीवन कठिन बन जाता है। तो जिसने मन को पर विजय प्राप्त कर लिया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। तो यहाँ मनी ग्रीव नंद कुबेर क्या कह रहे हैं कि मन के द्वारा आपके चरण कमलों का चिंतन करें। दूसरे शब्दों में मन द्वारा भगवान के उपदेश का चिंतन करो। गीता में भगवान ने क्या संदेश दिया है, भगवतम की क्या क्या उपदेश है, भक्ति रसमृत की क्या शिक्षा है। मन द्वारा भगवान के उपदेश का विचार करो। फिर मन द्वारा भगवान की लीलाओं के विषय में, जैसे यशोदा माता जब मक्खन मथुरी थी तो उन्होंने एक गीत बनाया था जिस भगवान की लीलाओं के ऊपर, क्योंकि भगवान ने कई असुरों का वध कर दिया था। तो एक तरफ से यशोदा माता अपनी सेवा कर रही थी, दूसरे तरफ से भगवान का गुणों का गुणगान कर रही थी। तो उसी प्रकार हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, और जीव द्वारा जब भी जितना भी मौका मिले आप भगवान का गुणगान करो। यहाँ कहा जा रहा है कि मन द्वारा आपके चरण कमलों का चिंतन करें, तो एक साधन है भगवान की लीलाओं का चिंतन, दूसरा है भगवान के उपदेश का चिंतन। जैसे भागवत में आप पढ़ते हो कि जब भगवान अप्रकट हो गए थे पहले स्कंद में, तो अर्जुन बड़े दुखी हो गए थे, शोक में थे, भगवान अप्रकट हो गए, उदास थे। अर्जुन ने फिर उन घटनाओं का स्मरण किया जो कि भौतिक दृष्टि से कठिन असंभव थी, पर भगवान की असीम कृपा से सफलता प्राप्त हुई। फिर अर्जुन ने एक भगवान के गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया, और जब उन्होंने गीता के संदेश का स्मरण आरंभ किया तो उन्हें ऐसे लगा कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित है, और जो उदासी थी वो समाप्त हो गई। तो प्रभा जी इस विषय में कहते हैं कि इसी प्रकार हम भक्तों को सदा क्या भगवान के संदेश का स्मरण करना चाहिए, खास करके गीता के संदेश का। तो यहाँ कहा जा रहा है भगवान के चरण कमलों का चिंतन, तो एक है भगवान के उपदेश, भगवान के स्वरूप, भगवान की लीलाओं का, भगवान की इच्छा का। जैसे प्रहलाद महाराज ने हमें कहा है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं सातवें स्कंद में कि हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, मुझे उनकी चिंता है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदल रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज का क्या प्रयास रहता था, सदा प्रचार करना है ना। हालांकि चारों तरफ चौकीदार उनके पिता ने रखे हुए थे, जब भी वो प्रचार करते थे। जब हमारी एक संस्था की स्थापना हो रही थी रशिया में उदाहरण के लिए, जिसका नाम सोवियत यूनियन था, उन जिस हमें प्रभुपाद जी मांग गए, तो जब संस्था की स्थापना हो रही थी उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी, और सरकार के प्रतिनिधि पुलिस वालों ने कई बार भक्तों को कहा तो ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये संस्था हरि नाम छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, पर भक्तों ने नहीं छोड़ा और प्रचार करते गए। कई भक्त जेल में गए सालों के लिए। विश्व के कई स्थान है आज भी जहाँ की आप ग्रंथों का अगर वितरण कर रहे हो तो आप जेल में जा सकते हो, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं है। पर जब भी भक्तों में इतना उत्साह है प्रचार के लिए, वो प्रचार करते हैं। तो भगवान के विषय में चिंतन करते हुए एक भाव ये भी है कि इस प्रकार आप अतीतों का उद्धार कर सकते हो। चेतन चैतन्य में आप कथा पढ़ते हो, एक भक्त है महाप्रभु के जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, और इतनी गहरी बीमारी कि पूरा शरीर पस से भरा हुआ था, और पूरे शरीर में कीड़े थे। पर वो इतने दयालु थे कि अगर कोई कीड़ा नीचे गिरता भी था उसे उठाकर जोड़ देते थे शरीर के साथ। तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में थे, वो कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे थे, और जब वहाँ से चल पड़े थे तो बस विप्रा पहुँचा। जब उन्हें पता लगा कि महाप्रभु चल पड़े हैं तो लगभग बेहोश हो गए। महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वापस लौटे अपने प्रिय भक्त वासुदेव को, उन्होंने क्या किया, गले लगाया। जैसे ही गले लगाया वासुदेव विप्र का बदसूरत शरीर जिसे बदबू आती थी एकदम एक खूबसूरत युवक का शरीर बन गया, बिल्कुल युवक का खूबसूरत शरीर। तो वासुदेव विप्र समझ पाए महाप्रभु की असीम कृपा से यह संभव हो पाया है, और फिर उन्होंने उन स्तुतियों का उच्चारण किया जिसका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। जबकि वो अपने घर में लौटे और देखा घर के बजाय महल हो गया है, और मित्र कृष्ण की कृपा से तो उन्होंने उन सुंदर स्तुतियों का उच्चारण किया और फिर उन्होंने महाप्रभु से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि पहले मेरा शरीर इतना बदसूरत था कि कोई मेरे निकट भी नहीं आता था, अब आपकी कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूँ। मुझे डर है कि मेरे मन में घोड़ों का मन नहीं आ जाए, तो विनम्रता के साथ रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो महाप्रभु ने क्या कहा, चैंट हरे कृष्णा एंड प्रीच द ग्लोरीज ऑफ हरे कृष्णा। हरे कृष्णा का उच्चारण करो और हरे कृष्णा की महिमा का प्रचार करो। भागवतम गीता पढ़ो और गीता भगवत के संदेश का प्रचार करो। अगर तुम ये दो कार्य करोगे तो हमेशा तुम्हारे हृदय में विनम्रता रहेगी और घमंड नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी इस लीला के तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, उसी प्रकार इस संस्था के सब भक्तों का उद्धार हुआ है। तो सबको क्या करना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण और गीता भगवत के संदेश का प्रचार। तो ये भी एक माध्यम है चिंतन का, सोचना किस प्रकार आप पतितों का उद्धार कर सकोगे। आगे कहते हैं, हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके विभिन्न रूप हैं और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूप का दर्शन करें। तो भक्त के मन में ये भाव रहता है कि जो भी संपत्ति है, जो भी सुविधा है, भगवान की कृपा से है और इसलिए उनको उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। और हमारी आंखें क्या कह रहे हैं, सदा आपके वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। तो कह रहे हैं आंखों द्वारा हम सदा किसका दर्शन करें, वैष्णव का। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया था वैष्णव किसे कहते हैं, उन्होंने कहा जिसको देखने से तुम कृष्णा का स्मरण करते हो। तो कह रहे हैं आंखों द्वारा वैष्णव का दर्शन करें। इसके द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है कि हम सदा वैष्णव की संगत में रहें। भक्तों का यह भाव रहता है कि सदा वैष्णव संगत में रहें। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो रामानंद रॉय जो उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल थे उनसे मिले गोदावरी नदी के तट पर। सर्वम भट्टाचार्य को ने उन्हें सूचना दे दी थी यात्रा शुरू करने से पहले कि जब आप दक्षिण भारत में जाओगे आपको ये महान संत रामानंद रॉय मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद रॉय से अनेक प्रश्न पूछे। भक्त की इच्छा रहती है भगवान का गुणगान करे, भगवान की इच्छा रहती है भक्त की महिमा को बढ़ाए। तो इसलिए आप देखते हो कि भीष्म देव भी जब शरीर त्याग रहे थे भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, पूछो भीष्मदेव से जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। भगवान खुद उपदेश दे सकते थे पर उन्होंने क्या कहा, पूछो। भगवान खुद जगाए मलाई को उद्धार कर सकते थे पर उन्होंने ये क्रेडिट दिया कि सही नहीं देना लग रहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे थे रामानंद रॉय से। एक प्रश्न ने पूछा था, व्हाट इज द थिंग दैट गिव्स यू द मोस्ट डिस्ट्रेस, वो कौन सा कार्य है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा दुख आएगा। रामानंद रॉय ने कहा, अपार्ट फ्रॉम सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज ऑफ कृष्णा आई नो ऑफ नो अनबेरेबल डिस्ट्रेस। कि जब आप भक्तों की संगत से जुदा हो जाते हो ये है सबसे अधिक कष्ट का कार्य। और पूछा गया था व्हाट इज मोस्ट ऑस्पिशियस, भक्तों की संगत में रहना। तो यहाँ भी ये भाव प्रकट किया जा रहा क्या, हमारे आंखें सदा आपके अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। जो वैष्णव हैं भगवान से अभिन्न है इस रूप से कि सदा उनके मन में क्या भाव रहता है, भगवान की सेवा। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए क्या, कि हम सदा रहें किसकी संगत में, वैष्णव की संगत में रहें। वैष्णव की संगत में रहोगे तो संभव है भक्ति में ही रहेंगे। कई बार हम वैष्णव की संगत में जब रहते हैं तो वैष्णव के कई नुकसों को निकालते रहते हैं, ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए हम उनके गुणों को देखें। और नारद मुनि भागवतम के 34 स्कंद में कहते हैं कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है संगत उनकी जो भक्ति में आपसे आगे जा एडवांस है, दूसरा है संगत उनकी जो आपके बराबर है, तीसरा है उनकी संगत जिनके पास आपसे कम ज्ञान है। और नारद मुनि कहते हैं इस विषय में, जब आपका सौभाग्य हो क्योंकि संगत मिले जो आपसे ज्यादा एडवांस्ड हैं तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। और भागवत में कहा उदाहरण दिया जाता है, जैसे जब पीकॉक्स मोर हैं, जब वो बादल को देखते हैं वर्षा के मौसम में पहली बार तो खुशी में नाचते हैं। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने कहा कि जब हम उनसे मिलें जो आपसे एडवांस है ज्यादा भक्ति में तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। जब हम उनकी संगत में रहें जो हमारे बराबर के हैं तो हमें मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए। तो मित्रता का भाव क्या है? एक साथ हम सेवा करें, एक साथ प्रचार करें, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। जब एक दूसरे को मिले तो कृष्ण कथा की चर्चा करें, भगवान के उपदेश की चर्चा करें। वैसे तो भौतिक समाज में सब पूछते हैं कैसे हो, तो सब कहते हैं ठीक है, पर हमारा विषय रहता है भौतिक चर्चा। पर जब आप एक दूसरे भक्तों को मिलो तो क्या प्रयास रहना चाहिए? कृष्ण कथा करो, पूछिए क्या है भगवान का संदेश, क्या पढ़ा आपने, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाए। जब आप भक्ति में किसी को कम भक्ति के भाव के व्यक्ति को मिलो या किसी ऐसे व्यक्ति को मिलो जिसके पास भक्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो उसके प्रति क्या भाव होना चाहिए? क्या भाव? दया का भाव। परा दुखा दुखी कहा गया है वैष्णव जब दूसरे व्यक्ति को देखता है भौतिक कार्यों में जुड़ा हुआ है तो वह अत्यंत दुखी हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है वैष्णव को क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। तो अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, पर सेवा में ये जो प्रचार की सेवा है इसे सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं सब प्रकार के भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? जो मैं प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना। कई बार लोग पूछते हैं स्वामी जी भक्ति में कोई शॉर्टकट नहीं है? तो एक शॉर्टकट है आप प्रचार की सेवा में। तो भगवान कहते हैं सब भक्त में सबसे प्रिय कौन है? जो मैं प्रचार करता हूँ। तो ये प्रचार की सेवा पर हमारे आचार्यों ने इतना महत्व दिया है क्योंकि भगवान ने खुद इस प्रचार इस सेवा पर महत्व दिया है। आप देख लो अगर श्रील प्रभुपाद वृंदावन छोड़कर बूढ़ी आयु में अमेरिका नहीं जाते, इस संस्था की स्थापना नहीं करते तो हम सब कहाँ होंगे? आज लाखों लोग जुड़े हैं कृष्ण भक्ति के साथ क्योंकि भक्त प्रचार कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी रशिया गए थे 1971 में 5 दिन के लिए, उस समय एक भक्त भी नहीं था हाँ उस देश में, और केवल अमेरिका में कुछ केंद्र थे। प्रभुपाद जी गए 5 दिन में एक भक्त बना। बाबा जी के सेक्रेटरी श्याम सुंदर मेरे साथ है बॉम्बे में 3 दिन पहले, तो वो कह रहे थे कैसे श्याम सुंदर ढूंढ रहा था कोई दूध की दुकान, तो एक रशियन लड़का खड़ा था एक इंडियन के साथ, इंडियन था, इंडियन एम्बेसी के किसी अधिकारी का बेटा, तो दोनों खड़े थे। और उन दिनों में जो कोई भी विदेशी आता था तो रशियन लोग पूछते थे डॉलर है क्या, डॉलर आजकल तो भारत में काफ़ी लिबरल हो गया, पर कुछ साल पहले इंडिया में भी अगर आप विदेशी हो तो लोग मांगते थे पैसा। तो कोई आया शाह सुंदर के पास पूछने का, डू यू हैव एनी डॉलर्स, तो इसी बहाने चर्चा शुरू हुई। तो बस शाह सुंदर का, नहीं मेरे पास कोई डॉलर नहीं है, डू यू हैव जीन्स, अमेरिकन जीन्स। तो शाह सुंदर ने कहा, वी डोंट वेयर जीन्स, वी ओनली वेयर धोती कुर्ता। उसने पूछा वो रशियन ने, you have any records of the Beatles? So Shyam Sundar dekha, the guru of the Beatles is here. So us Russian ne kehne ka, guru of Beatles is here, can I meet him? Shyam Sundar ka, ha Beatles ka, usne Beatles ka, unhone Beatles ka record manga, to ya Beatles ka record nahi hai, unka guru idhar Moscow mein. Yes, I'll take you. I'm also a disciple of the guru of the Beatles. So ये रशियन लड़का आया प्रभु शांतनंदन के साथ प्रभुपाद जी को मिलने, और पांच दिन में प्रभुपाद जी ने उसे पूरी ट्रेनिंग दे दी, धोती पहना, किक, और प्रभुपाद होटल में ठहरे हुए थे, नेशनल होटल में, तो होटल में तो इतनी सुविधा भी नहीं है, तो प्रभुपाद जी इतने खुश थे भगवान ने एक रशियन भक्त भेजा है, तो उसको पांच दिन रात पापा जी उसको समझा रहे थे आत्मा गीता का सिद्धांत भगवतम का सिद्धांत, और पांच दिन के अंदर पापा जी ने दीक्षा भी दे दी और रसोई बनाना सिखा दिया, और फिर पापा जी वहाँ से चल पड़े, और फिर ये अनंत शांति ने प्रचार शुरू किया, राधे को लाखों भक्त उदय। तो प्रचार के माध्यम से हर कार्य संभव हो सकता है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रचार की सेवा को इतना महत्व दिया है। तो हम भक्तों का यह भाव होना चाहिए कि हमें प्रचार करना, प्रचार के अनेक साधन हैं, भक्ति वृक्ष नामह, जैसे कल मोहाली में प्रोफेसर हुआ था, और एक और साधन क्या है, क्या है सब प्रकार के प्रचार के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, ग्रंथों का वितरण। तो ग्रंथों के वितरण की सेवा पर प्रभुपाद जी ने क्यों इतना बल दिया, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान की वाणी है, इन ग्रंथों में भगवान का उपदेश है, और साथ में हमारे आचार्यों का की तात्पर्य, हमारे आचार्यों का विचार भी है। प्रभुपाद जी जब ये तात्पर्य लिखते थे तो अपने समक्ष महान आचार्यों के तात्पर्य को रखते थे, और फिर उनके महत्वपूर्ण भावों को लेकर उन्होंने हमें ये तात्पर्य दिए हैं, और लोग इन ग्रंथों को पढ़ते हैं और क्या अपने जीवन को सुधारते हैं। तो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष हमारे इस्कॉन के भक्त सारे विश्व में, खास करके भारत में भी प्रयास करते हैं क्या, ग्रंथों को मारने के। हम लोग घर घर जाते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, उन्होंने भक्तों को क्या कहा, घर घर जाकर यह संदेश दो, क्या बोलो कृष्णा भाजो कृष्णा करो कृष्णा श्रेष्ठ, और उनके भक्त घर घर जा रहे थे। आपने अनुभव किया होगा कि भारत में जो क्रिश्चियन ईसाई हैं घर घर आते हैं बाइबल बांटने के लिए, कि नहीं, मुझे हरियाणा पंजाब में भी कई भक्तों ने कहा कि उनके घर भी आए थे। तो हर साल हमारे भक्त प्रयास करते हैं गीता बांटने के लिए, और कई लोग स्पॉन्सर भी करते हैं, जो हम होटलों में जेलों में ये सब कुंभ मेला आ रहा है जनवरी से, आप जानते हो वहाँ कुंभ है, यहाँ के इस्कॉन का बहुत बड़ा कैंप लग रहा है, कुंभ मेला में भी हम गीता बांटेंगे। तो आप सब भक्तों से एक खास निवेदन है कि जैसे आप हर साल जुड़ते हो, ये साल भी जुड़ेगा गीता वितरण की सेवा में, कितने आप में से कितने भक्त पिछले साल जुड़े थे इस सेवा में, मैराथन जुड़े हो? बस मैंने सोचा था सब हाल उठाएंगे। तो जो नहीं भी जुड़े थे, जो जुड़े हैं वो तो मेरे ख्याल से फिर जुड़ेंगे ये सब, है ना। वो जो नहीं जुड़े थे, मैंने ये देखा कि कितने भक्तों ने पिछले साल मैराथन की सेवा में सहयोग दिया था, हाल उठाइए एक बार फिर से। तो अंदाजे से उपस्थित भक्तों के ये मुश्किल से 40% होंगे। तो मतलब अभी इस सभा में भी 60% भक्त जो उपस्थित हैं उन्होंने पिछले साल मैराथन में कोई खास सेवा नहीं की, या उनमें इतनी विनम्रता है कि वो हाथ ही उठाना चाहते हैं। कई बार लोग कहते हैं हम दान देने बहुत दिखाना नहीं चाहते, कई बार बट ये बताना नहीं चाहते कि उन्होंने सेवा की है। तो आप सबसे निवेदन है कि ये साल भी आप जुड़िए और गीता बांटने का प्रयास कीजिए। लोग गीता पढ़ेंगे, जीवन को सुधारेंगे। और आज जिसका कि भी कई भक्त हैं जो जुड़े हैं गीता के माध्यम से, आप लोग जो वृंदावन कार्तिक में गए थे वृंदावन, आप लोग तो वहाँ आपने एक भक्त देखवाएगा विश्व रूप जो व्हील चेयर में होता है हमेशा, हाँ व्यास पूजा में भी आता है। तो अहमदाबाद में हमारे भक्त रहे हैं एक विचारू दास, वो कोई 15 साल पहले घर घर जाकर गीता बांट रहे थे और घर घर बांटते बांटते विश्वरूप के घर में आए। ये दो भाई थे उस समय, दोनों पैदाइशी से हैंडीकैप थे, तो उनको उनके पास इस्कॉन के बारे में कोई सूचना नहीं थी। तो विचारदास ने बड़े उत्साह से उन्हें प्रभावित किया गीता लेने के लिए, तो उन्होंने गीता ली, गीता पढ़ना शुरू किया, मंदिर आना शुरू किया। अब देखो कितने अच्छे भक्त। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब लोग भक्त घर घर आते हैं उनको मिलकर कैसे उनका जीवन सुधरा है। आप सबसे यही निवेदन है कि आप भी जुड़िए मैराथन में हिस्सा। मेरे ख्याल से आपके चंडीगढ़ मंदिर का योजना क्या है ये साल?
33,000
की। तो पिछले साल क्या था? 28. पिछले साल आप भक्तों ने मिलकर 28,000 की तो बाटी थी, ये साल 33,000 कोटा है। तो बांट पाओगे?
Yes.
आपकी सूचना के लिए जो आपके संत नगर का मंदिर है दिल्ली में, हाँ इतना बड़ा मंदिर तो नहीं है, पर उन्होंने जिम्मेदारी ली है ये साल 3.5-4 लाख गीता बांटेंगे। और पिछले साल में कहा कि उन्होंने 3 लाख के बराबर बांटी थी। जहाँ पंजाबी बाग का केंद्र है उन्होंने भी जिम्मेदारी ली है, मेरे ख्याल से 3.25 लाख गीता बांटेंगे। तो आप बोले हाँ वो तो बड़ा शहर है दिल्ली, वहाँ इतनी माया है जितनी चंडीगढ़ में भी माया है। ये सब निर्भर है भक्तों के उत्साह के ऊपर। अगर आप उत्साहित हो गए, अगर आप में यह भाव है कि हमने गीता पहुँचानी है किसी न किसी माध्यम से, तो भगवान सुविधा देंगे। जैसे मैं कह रहा था पश्चिम देशों में हमारे भक्तों को बड़ी कठिन परिस्थितियों में ग्रंथ का वेतन करना पड़ता है। रशिया में सरकार रशियन चर्च टीवी में एडवर्टाइजमेंट में डालता है भगवद गीता मत खरीदो, ये असूल हो रही है, क्या नहीं करते वो। पर जब भी हमारे भक्त जाते हैं, और कई देशों में जैसे उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, वहाँ सरकार ने कानून बनाया कि कोई भी धर्म का ग्रंथ बांट नहीं सकते, क्योंकि उनको डर है वहाँ इस्माइली फंडामेंटलिस्ट का। तो उस स्थिति में भी हमारे भक्त जाते हैं प्रचार करने के लिए, कई बार पकड़े जाते हैं फिर सरकार भी छोड़ देती है। तो आपके चंडीगढ़ में तो ये खतरा नहीं है ना, आप गीता वितरण करने जाओगे फिर पुलिस वाले तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, यहाँ तो आप बिल्कुल भय से रहे प्रचार कर सकते हो। तो करोगे प्रचार? तो संक्षेप में आज का जो श्लोक आपको पढ़कर सुनाया, इस श्लोक का उच्चारण मन की मदन कबेर कर रहे हैं और बड़े सुंदर रूप से हमें उपदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार हमें वाणी का उपयोग करना चाहिए भगवान के गुणगान के लिए और हाथ पांव और अनेक अंगों का उपयोग करना चाहिए भगवान को क्या करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। मन द्वारा क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। और आंखों से क्या करना चाहिए, वैष्णव का दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो अगर आप इस श्लोक के संदेश का पालन करोगे तो बिना शंका के कहां जाओगे, भगवान के धाम जा सकोगे। तो कई बार लोग कहते हैं हमें तो चंडीगढ़ अच्छा लगता है, भौतिक संसार में क्या कष्ट है कष्ट। तो इस श्लोक का संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका पालन करने का हमें प्रयास करना चाहिए और साधु संग में रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।